अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण महापुरुषों के परम पुरुषार्थ का साक्षात कार्य स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन जिसमें बैठकर हम आप नित्य प्रति भगवत चर्चा ज्ञान चर्चा ऋषियों महर्षियों और भगवान के वाक्यों की चर्चाएं करके अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर चिंतन के माध्यम से उसका निर्धारण उसके प्राप्त करने का तरीका अपने आप के स्वरूप को समझने का तरीका हम लोग निरंतर मनन चिंतन करते हैं। तो वर्तमान में श्रीमद् भगवद गीता का षोडश अध्याय 16वां अध्याय हमारा जो है माध्यम है दैवी संपदा यानी ऐसी संपदा जिस प्रकार से बाजार में आपको जो है बिना पैसे के बिना अर्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार से अध्यात्म के संसार में भी जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी बिना दैवी संपदा के हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान ने गीता के बिल्कुल अंतिम चरण में जाकर जो है पूर्णतया दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किया क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अंदर हमेशा विद्यमान हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में सुमति और कुमति है ना, जिस समय जो है माल्यवान ने समझाया रावण को सुमति कुमति सबके उर राही, सबके अंदर दैवी संपदा भी है और जो है आसुरी संपदा भी है। तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों का जब हम अनुसंधान करते हैं अपने अंदर तब हमको पता चलता है कि हम वास्तविकता में किस संपदा से भरे हुए हैं, हम दैवी संपदा से भरे हुए हैं या आसुरी संपदा से भरे हुए हैं। तो हम लोगों ने निर्णय किया अभयम सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति का पिछले दिनों में कि किस प्रकार से जब भगवान का भक्त अपने भगवान के स्वरूप को समझता है, ज्ञानवान जब अपने स्वरूप को समझता है तो संसार से अभय हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। ये संसार के तरह तरह के भय जिनसे साधारण प्राणी जो है हर समय आक्रांत रहता है, पूर्णतया उससे ग्रसित रहता है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष संपूर्ण सांसारिक भयों से अपने आप को मुक्त अनुभव करता है क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं मरने जीने वाला नहीं हूं। ना जायते मृतेव कदाचिन, चाहे श्रुतियों में जाएं या श्रीमद् भगवद गीता में जाएं, दोनों जगह आपको ये श्लोक मिलेगा, कटश्रुति में मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। तो सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के बगैर अध्यात्म का दर्शन संभव नहीं है क्योंकि मल विक्षेप होने पर जिस प्रकार से आपको जल के आर पार नहीं दिखाई देता और वही जल जब शुद्ध हो जाता है तो उसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से सबसे निकटस्थ परमेश्वर होने पर भी उस परमेश्वर को ना तो हम दर्शन कर पाते हैं ना उस परमेश्वर को समझ पाते हैं ना उसकी सत्ता को समझ पाते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारा अंतःकरण उस गंदे जल की तरह मलिन है और उसमें हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना सांसारिक सुख दिखाई देते हैं और ना अध्यात्म का चमत्कार दिखाई देता है। और उसके बाद आता है ज्ञान योग व्यवस्थिति यानी जिस ज्ञान का निर्धारण हमने अपने जीवन में किया है, निर्णय लिया है अध्यात्म के पथ का, उसमें हम कितना चल सकते हैं ये आपको स्वयं अपने जीवन को पढ़ना पड़ेगा कि वास्तविकता में क्या हमारी दृढ़ अवस्था है, क्या हमने अपने ज्ञान को दृढ़ीभूत किया हुआ है। तो आपको जब आप अपने आपके जीवन को पढ़ेंगे नित्य प्रति के तो समझ में आएगा कि हम कुछ घड़ी कुछ क्षण ही अपने ज्ञान के संग रह पाते हैं, अन्यथा वो संसार हमको अपनी ओर आकर्षित करके संसार की सत्यता का बोध कराने लगता है और संसार की सत्यता का बोध होते ही हम परमेश्वर से निज स्वरूप से अपने आप से दूर हो जाते हैं, सत्य से दूर हो जाते हैं, असत्य के संग जुड़ जाते हैं और इसका परिणाम एक ही है, सुख दुख और जिसको हम लोग कर्ता भोक्ता की अवस्था कहते हैं, हम अपने आप को करने वाला मानने लगते हैं, अपने आप को सुख दुख भोगने वाला मानने लगते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञान का हेतु बन जाता है। लेकिन शनय शनय जब हमारी दृढ़ स्थिति इस ज्ञान में हो जाती है, परमेश्वर में हो जाती है, चाहे वो भक्ति के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञान शास्त्र ज्ञान के माध्यम से हो, जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसी प्रकार से वो उस भाव को अपना सकता है, तो एन केन प्रकारण जिस किसी भी प्रकार से हमारी स्थिति परमेश्वर में उस सत्य में दृढ़ होनी चाहिए। तो हर समय धीरे 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 क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एक क्षण भी उससे दूरी बनाने में भय ही भय है ना, तो एक क्षण की दूरी भी शास्त्र कहता है उससे परमेश्वर से या सत्य से नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान योग व्यवस्थिति कही गई, यानी भगवान का भक्त या ज्ञानवान अपने ज्ञान से, परमेश्वर का भक्त अपने परमेश्वर से एक क्षण भी अलग नहीं होता। इसीलिए साधारण मनुष्य जड़ निद्रा में विश्राम करता है, हम आप जो सोते हैं जड़ निद्रा में जड़ीभूत होकर अपने अंग प्रत्यंग सबको सब कुछ भूल करके जो है आपको निद्रा आती, जड़ निद्रा कहलाती। लेकिन जब ज्ञान योग व्यवस्थिति हो जाती है तब फिर जड़ निद्रा नहीं होती, फिर वो योग निद्रा कहलाती है ना। भगवान के बारे में आपने श्रवण किया होगा कि शेष सैया पे भगवान योग निद्रा में श्रवण करते हैं, जड़ीभूत नहीं है वो, परम चैतन्य सत्ता है वो, जड़ीभूत नहीं होती। हम लोग जो है निद्रा की प्रगाढ़ अवस्था जिसको सुषुप्ति कहते हैं उसमें पूर्णतया जड़ स्थिति में चले जाते हैं, हमको अपने शरीर का तो शरीर का अपनी चैतन्य सत्ता का भी बोध नहीं रहता। तो इसलिए जब ज्ञान योग व्यवस्थिति आ जाएगी तब आपको योग निद्रा का आनंद आएगा हमारा, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय आप अपने चैतन्य रूप का या परमेश्वर का अनुभव कर सकेंगे। और जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई, ज्ञान योग व्यवस्थिति नहीं हुई है, तब तक आप सब कुछ भूल करके सो जाएंगे और उठेंगे तो फिर आपको जागृत संसार नजर आने लगेगा, फिर आप पुस्तक लेके बैठ जाएंगे, मुझे गीता का पाठ करना है, मुझे उपनिषद पढ़ना है, मुझे ज्ञान ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से ये आवागमन वाला जो ज्ञान है, आने और जाने वाला जो ज्ञान है, उसके कारण हमको शुद्ध सच्चिदानंद घन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता। क्योंकि शुद्ध सच्चिदानंद घन का अनुभव होने पर आपके अंदर से पूर्णतया जड़त्व तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आप जो है योग के पूर्ण अवस्था में स्थित हो जाएंगे। योग का मतलब मिलन, आपका अपने स्वरूप के संग मिलन हो जाएगा, आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, जो सबसे बड़ी जो संग दोष हमको लगा हुआ, इस शरीर का संग कर लेने पर, जैसे कोई यात्री नाव के अंदर बैठ जाने पर अपने आप को नाव ही मान बैठे, उसी प्रकार से हम इस शरीर रूपी नाव के धर्मों को ही अपना धर्म मान लेते हैं। और मजा तो उस समय आता है जब महाराज कोई जो है ज्ञान का अध्ययन करने वाला, उपनिषद और वेदों को पढ़ने वाला कहता है महाराज आज बहुत बढ़िया नींद आई। क्यों भाई, अगर कोई ये कहेगी आज बहुत बढ़िया नींद आई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसको ज्ञान में मजा आ रहा है कि अज्ञान में है? क्यों भाई, सुषुप्ति जो जड़ निद्रा है वो जड़ है या चैतन्य है? अरे कबीर दास ने कहा कि नहीं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। बोलो तो रात्रि यदि सोने में जा रही है और दिवस यदि खाने में जा रहा है और उसके बाद आप उपनिषद लेके घूम रहे हो, क्यों भाई, कोई है दम? कोई दम नहीं है, सब बेकार है। जब तक ज्ञान योग व्यवस्थिति नहीं होगी महाराज, जब तक पूर्णतया ज्ञान में अवस्थित नहीं हो जाओगे तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला ये ज्ञान आएगा और जाएगा। जब तक प्रेमपुरी में बैठे रहोगे अपने आप को बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करोगे, और जैसे ही प्रेमपुरी छूटा फिर से क्या हो जाओगे? पहले बहुत पहले यहां पे जो है कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है प्रसंग, बहुत पहले यहां पर एक भंडारी थे तिवारी जी, है ना, तो तो जब दूसरे माले का सत्संग समाप्त तीसरे माले का सत्संग समाप्त होता था, लोग दूसरे माले पे जाते थे, तिवारी जो है वो भंडारी मजाक करता था सत्संगियों से, बोले भाई तीसरे माले के ब्रह्म आ गए नीचे। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान मजाक बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, मजाक बन जाता, प्रहास बन जाता। और जब हम गीता पढ़ते तो भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया, गुड़ाकेश अर्जुन। क्या कहा? हाँ, गुड़ाकेश का मतलब समझते हैं ना? हाँ, निद्राजित अर्जुन। देखो कैसे रटा हुआ बिल्कुल। तो ये अर्जुन के लिए है या हमारे लिए भी है? हमारे लिए भी है, लेकिन हमको तुम्हारा नींद में मजा आता है। बोले बहुत बढ़िया, खा ऐसा सुंदर भोजन था, खा के खर्राटा मार के सो गए महाराज, पता ही नहीं चला समय का। तो जिस दिन ऐसा हो उस दिन हमको प्रायश्चित का अनुभव होना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का कि महाराज ऐसा कौन सा परमेश्वर मैंने पाप किया था जिसके कारण मैं इतनी देर के लिए जड़ बन गया, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। अच्छी चीज नहीं है। किसके लिए? यदि आप परमार्थ के पथिक हैं तो, और यदि आप परमार्थ के पथिक नहीं है फिर तो यही तो आनंद है। सब खाओ पियो और ऐश करो, सो खूब बढ़िया आनंद लो। तो सांसारिकता या परमार्थ, दो में से एक का निर्णय आपको करना है। तो ये निर्णय स्वयं कीजिए, बहुत ज्यादा विस्तृत, क्योंकि बहुत 27 गुण है, सबके ऊपर चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा गुण है दान, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायश्च तपार्जवम। तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? दान। हाँ, दान जो है कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि परमार्थ तत्व का जो अनुभव या साक्षात्कार तभी होता है जब आप सर्वस्व का दान करते हैं। सर्वस्व का मतलब समझते हैं? सर्वस्व का मतलब है? हाँ, क्यों भाई ये टीचर पीछे क्यों भाग गई भाई? डर लगता है। देखो हाँ, सर्वस्व का मतलब क्या होता है? हैं? देखा, सर्वस्व का मतलब अहंकार। ये जो देहाभिमान है इसका दान बड़ा कठिन है महाराज, इतना आसान नहीं है। इस देहाभिमान का त्याग, आपने किसी को 10 रुपए दिए, बहुत ध्यान से सुनना जरा, आपने किसी गरीब व्यक्ति को 10 रुपए दिए और आपका मित्र भी आपके संग खड़ा है, और कुछ दिनों के बाद दोनों फिर आप उसी व्यक्ति के सामने आ गए और उस व्यक्ति ने जो क्या किया, आपकी बजाय उसका नाम लेकर दूसरे को बताया, परसों इन्होंने मुझे 10 रुपए दिए थे। बोलो भाई आपको कैसा लगेगा? क्यों भाई, क्या होगा? हैं? अगर आपके अंदर सहन शक्ति है तो हंस के टाल जाओगे, और अगर नहीं है तुरंत बोलोगे इन्होंने नहीं, किसने दिए थे? ये है देहाभिमान महाराज। जब एक 10 का नोट हमको इस प्रकार से हिला सकता है तो बाकी चीजों का दान जो और ज्यादा बड़ा बड़ा होता जाए तो समझ जाइए महाराज हमारा देहाभिमान कहां जाएगा। सर्वस्व दान के बगैर ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसके लिए आपको बड़े छोटे छोटे दानों का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमारे यहां 2 ऐसी विभूतियां देखी गई शास्त्रों में, श्रुतियों में जाएं तो दान के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले नचिकेता, और यदि महाभारत में जाएं तो दान के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा को प्राप्त करने वाले कौन है? कर्ण है, है? दानवीर कर्ण। अच्छा, और ये मत भूलिएगा, दानवीर कर्ण केवल कर्ण ही दानवीर नहीं थे, दुर्योधन भी उसी के बराबर दानवीर था। शायद आपको ये चीज नहीं मालूम होगी, दुर्योधन भी कर्ण के बराबर ही दानवीर था महाराज, लेकिन दुर्योधन ने अपना दान करके सब कुछ गंवा दिया, और कर्ण ने पूरे महाभारत में जिस प्रकार से रामचरितमानस में पूरी रामलीला में जो गति जटायु ने पाई है वो किसी ने भी नहीं पाई। जो गति किसको मिली? जटायु को। पूरे रामचरितमानस में बताओ भगवान श्री राम ने अपने हाथ से किसी का दाह संस्कार किया? केवल एक। कौन? जटायु। पूरा रामचरित्र, पूरा इतना बड़ा रामचरित्र है, एक दाह संस्कार भगवान ने किया जटायु का, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, जानते हुए कि रावण के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, उसने अपने शरीर का दान कर दिया, परित्याग कर दिया। दान, दान साधारण नहीं चीज है, भगवान को खरीद लिया महाराज जटायु ने शरीर दान करके। मिली कि नहीं परम गति? मिली। भगवान ने अपने हाथों से परम गति दी। महाभारत में यदि आप जाएं, पूरे महाभारत में जहां पर 11-11 छौनी सेना तो भगवान की थी, ना जाने कितने मरे, कितने जो है विलीन हो गए, लेकिन इतने बड़े जो गति भीष्म पितामह को भी नहीं प्राप्त हुई, वो किसको हुई? पूरे महाभारत में एक ही दाह संस्कार किया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान राम ने एक दाह संस्कार और भगवान श्री कृष्ण ने एक दाह संस्कार किसका? कर्ण का मारा है ना, जब अंतिम समय में ब्राह्मण वेश में जो है पहुंचे भगवान कि तुम दान दानी हो, हमने सुना हम गरीब ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आए हैं, बताओ तुम्हारा। अपना दांत जब तोड़ने लगा, भगवान ने प्रसन्नता प्रसन्न होकर कर्ण से कहा मांगो, क्या मांगते हो? कर्ण ने कहा महाराज अब देना ही है। तो कर्ण निराकांक्षित निरीक्षित था, महाराज हमारी आपकी तरह थोड़ी, भगवान कह रहे हैं मांगो, बोले दो फ्लैट बंबई में दे दो, उसके बाद वहां पर हम सत्संग करेंगे, है ना। भगवान से सत्संग भी मांग लो, फ्लैट भी मांग लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। कर्ण ने कहा महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, यदि देना है तो क्या दो? वो गति दो आज तक जो किसी को नहीं मिली। भगवान ने कहा क्या गति? बोले मेरी चिता यदि जले तो आपके हाथ में जले। बोलो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे ही मृत्यु हुई महाराज किसकी? कर्ण की। भगवान ने जो है उसको अपने हाथों में उठा लिया और योगाग्नि का आवाहन किया और देखते ही देखते उसका शव जल के राख हो गया। ये गति प्राप्त हुई किसको? कर्ण को, केवल एक गुण के कारण। देखिए 27 गुण हैं दैवी संपदा के, यानी 27 नोट हैं ये बड़े बड़े, इनमें से एक भी नोट अगर आपके पास है तो आपको ब्रह्म ज्ञान कहें, आत्मज्ञान कहें, स्वरूप की प्राप्ति कहें, परमात्मा की प्राप्ति कहें, सब शब्द भेद हैं, कोई अंतर नहीं है, आपको प्राप्त हो जाएगा, वो अनंत प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई कर्ण का दाह संस्कार करने वाला ये गीता सुनाने वाला ही तो है कि कोई और है? क्यों भाई है? तो कर्ण को जो गति प्राप्त हुई भीष्म पितामह को नहीं मिली, गीता सुनने वाले अर्जुन को नहीं मिली। अर्जुन को हिमालय में जाके गल के शरीर अपना छोड़ना पड़ा, ना वहां भगवान थे भीष्म पितामह के सामने, तो फिर भी पीताम्बर वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे, ध्यान दो। और उसके बाद कर्ण की जो गति है, पूरे महाभारत में एक भी, केवल एक दाह संस्कार भगवान ने किया, और वो भी किसका? कर्ण। किसी का भी नहीं किया महाराज, जान दो। ये केवल और केवल मात्र दान से इन्होंने जो है भगवान को, एक गुण को अपना धर्म बना लिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज उनको अंत में विरोधी सेना में शामिल हो जाने पर, दुर्योधन की सेना में, अधर्म की सेना में शामिल हो जाने पर भी परम गति की प्राप्ति हुई। विचार करने वाली बात है, इस दान में इतनी शक्ति। दूसरी तरफ अगर आप नचिकेता के पास आओ, पीतोद का जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोका सागत छत्ता ददत, कहते हैं जो ऐसी गायों को दान देता है पिताश्री, वो नरक में जाता है। पीतोद का जिन्होंने जो है अंतिम बार अपना पानी पी लिया, जगद जिन्होंने अपना सारा चारा खा लिया है जीवन का, दुग्ध द्रोहा जिनका पूर्णतया दुग्ध निकाल लिया गया, ऐसी निरिंद्रिय गायों का जो आप दान कर रहे हैं, ये दान आपको नरक में लेके जाएगा। उद्दालक, इसी बोले ये छोटा सा बालक मुझे समझा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया, अंत में महाराज कठोर हो गया। छोटा सा बालक इतना कठोर हो गया महाराज, केवल दान से उत्पत्ति हुई कठश्रुति की, जरा ध्यान देना। जाके पूछा, महाराज पिताश्री आपने गाय दान कर दी, अब मुझे किसे दान करोगे? दलक बोले कोई पुत्र का भी दान करता है। जब जो है बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, जब उस पुत्र ने कहा, क्रोध आ गया महाराज जी को, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, मृत्यु को देता हूं। जैसे हम लोग जो है साधारण भाषा में, तो शास्त्र की भाषा है, श्रुतियों की भाषा है, लेकिन जब हम इसी चीज को बिल्कुल साधारण अपनी भाषा में यदि कहना चाहें, तो जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं या अपने किसी नजदीकी से कहते हैं, जाके मर जाओ, क्या कहते हैं? जाओ यहां से, मरो जाके, मरो जाके। ऐसा उद्दालक ने उनसे कहा, है ना, यमराज को देता हूं, ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई ना, मतलब मरो जाके, ऐसा उन्होंने कहा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। नचिकेता ने तुरंत क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और महाराज अपने शरीर को यमराज को दान कर दिया। क्या किया? यमराज को महाराज दान कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज उस दान के फलस्वरूप नचिकेता को किसकी प्राप्ति हुई? खाली ब्रह्म ज्ञान ही नहीं मिला महाराज, सबसे पहले तो जो रुष्ट हुए पिता थे उनकी प्रसन्नता प्राप्त हुई, उसके बाद जो अग्नि विद्या, जो स्वर्ग देने वाली यह अग्नि विद्या है, उसकी प्राप्ति हुई। यानी जब चाहें तब वो स्वर्ग के सुखों का आवाहन कर सकते थे या स्वर्ग के सुखों को किसी को दे सकते थे, ये विशेषता प्राप्त हुई। और उसके बाद जो है अंत में उनको किसकी प्राप्ति हुई? जो असली तत्व है, जो असली खजाना है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, उसके यमराज के द्वारा जो है नचिकेता को उसका उपदेश दिया गया, है ना। तो ये दान का प्रभाव है, केवल एक गुण से इन्होंने प्राप्त कर लिया। यानी कहने का मतलब है, जितने भी ये दैवी संपदा के गुण गिनाए जा रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी आपके अंदर आ जाए और उसको धर्म रूप में यदि आप धारण कर लें, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई है ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने में या परमात्मा की प्राप्ति में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो, कर्ण को किसी भी प्रकार से भगवान को बुलाना नहीं पड़ा कि मुझे मुक्ति कौन देगा, मैंने इतना दान किया है, या मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मैं मर रहा हूं, कोई मुझे मुक्ति कराओ आगे, मुझे मुक्ति दो आगे, कुछ भी नहीं माना। उसने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया और स्वयं भगवान को मुक्ति देने के लिए वहां पर आना पड़ा। ये अपने धर्म में स्थित होने पर ये स्थिति प्राप्त होती है। तो ये दान जो है भगवान ने तीन प्रकार का बताया है महाराज, जरा सुनो। यानी हमारे आपके लिए जो दान, क्योंकि रोज की चीज है, आप करते ही हैं, तो तीन गुण हैं हर मनुष्य के अंदर। जैसा अभी आपको हमने बताया, दानवीर केवल कर्ण ही नहीं था, दुर्योधन भी दानवीर था, रावण भी दानवीर था, कंस भी दानवीर था। लेकिन दुर्योधन में, जैसे आपको कल भी बताया था, हनुमान जी भी तीनों वेदों के ज्ञाता थे और रावण भी जो है वेदों का ज्ञाता था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? हनुमान जी ने वेदों से राम को भजा और रावण ने वेदों से संसार को भजा। जिसने वेदों से संसार को भजा उसको संसार मिला, जिसने राम को भजा उसको, निर्णय आपको करना है कि आपको संसार चाहिए या भगवान। क्यों भाई, एक बजरा अपने मुंह से बोल दो, क्या चाहिए? हैं? बोले महाराज क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो, संसार भी चाहिए पछी भगवान भी चाहिए, है ना। मरते समय भगवान भी मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, बेटा तुमने बड़ी मेरी सेवा की, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। दो में से एक निर्णय लेने पड़ेंगे। राम ने निर्णय, लंका, हनुमान जी ने क्या क्या था हनुमान जी के पास, बताओ, गिनाओ। घरवाली थी? नहीं थी। बच्चे थे? बंबई में फ्लैट था? तो हनुमान जी को तो महाराज कुछ भी नहीं मिला। मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला महाराज, खाली हाथ। हनुमान जी को देखा आपने कभी, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कोई किसी प्रकार का, कोई उनके संग है? कुछ भी नहीं। बड़े बड़े महलों का राजा कौन था? अरे रावण था कि नहीं था? तो महाराज वेदों के ज्ञान से उसने संसार मांगा, उसको भगवान ने संसार दिया। हनुमान जी ने राम मांगा, उनको भगवान ने राम दिया। महाराज तो निर्णय आपको करना है, इसीलिए हमारे यहां तीन गुण दिए गए। हर कर्म के संग तीन गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो दान क्यों करें, जब इस समस्या के लिए हम प्रश्न करते हैं, है ना? यहां तो आप लोग बैठ के प्रेम से सुनते रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये प्रश्न आपको करना चाहिए बोलने वाले से कि महाराज दान क्यों करें। आपके अंदर कभी ये भाव ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति सजग हैं ही नहीं, हम संसार के प्रति सजग हैं। अगर आप प्रेमपुरी से बाहर निकलो और प्रेमपुरी से बाहर निकलते ही महाराज सड़क के ऊपर पैर रखने के लिए आपसे पुलिस वाला कहे कि 10 रुपए दो, तो क्या करोगे? दे दोगे या पहले पूछोगे भाई क्यों? कहोगे कि नहीं क्यों, ये 10 रुपए क्यों दें सड़क के ऊपर पैर रखने? लेकिन यहां आप क्यों कभी लगाते ही नहीं हो। हमारे सारे शास्त्र, चाहे वो श्रुतियां हो चाहे स्मृतियां हो, सब की सब प्रश्नोत्तर ही हैं। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, है ना? जब आप परिप्रश्न करेंगे जाके वहां पर, अपनी उत्कंठा को, अपने संशय को समाप्त करने के लिए प्रश्न करेंगे, तो महापुरुष आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो महाराज दान क्यों, जब ये प्रश्न आया तो उसके जवाब में भगवान ने तीन उत्तर दिए। पहला, यदि आपका हृदय सात्विक है और आपका हृदय, आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय कर चुकी है और ये निर्णय ले लिया है उसने कि मुझे संसार नहीं, क्या चाहिए? हर कीमत पे परमात्मा चाहिए। तो उसके लिए दान क्या है, जरा सुनो। भगवान कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ये दान उनके लिए है, चाहे 1 पैसे का करो, चाहे 1 करोड़ का करो, 1 अरब का करो, संपूर्ण संपत्ति का करो या अपने आप का करो। जैसे जटायु ने महाराज माता सीता के लिए अपने आप का दान कर दिया, तो दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे, दान देना जो है वो देश काल है, सब देशे काले च पात्रे च, पात्र के अनुसार, काल के अनुसार और देश के अनुसार। और एक चीज जो हमारे यहां सबसे बड़ा दान में नहीं गिनाया गया, अंगद के सामने, अंगद जब रावण के सामने गए तो महाराज वहां पर जब उसने कहा भगवान श्री राम को साधारण नर, तो अंगद जी उखड़ गए, बोले कमाल की बात करते हो तुमने, राम को मनुष्य कैसे कह दिया? राम कभी मनुष्य हो सकते हैं? हनुमान जी क्या बानर हो सकते हैं? और अन्न दान क्या दान हो सकता है? तो अन्न दान जो है तीन महादान है हमारे यहां, एक कन्यादान महादान माना गया है, एक अन्नदान महादान माना गया है। और जब आप किसी को शरण देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शरण देने को क्या बोलते हैं? शरण देने को बोलते हैं अभय दान। जब आप किसी को अभय करते हैं, यानी तुम्हारी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, तुमसे पहले मैं मरूंगा, मेरे बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, जब आप ऐसा किसी को अभय दान देते हैं, जैसे भगवान ने विभीषण को जो है अपनी शरण में रखा, तो तरह तरह के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी को अभय दान देते हैं तो ये महादान में आता है। लेकिन उसके पहले जो छोटे छोटे दान हैं, देश के अनुसार यानी स्थिति कैसी है, काल के अनुसार इस समय इसको क्या चाहिए, और पात्र के अनुसार कि पात्रता उसकी क्या है, इसको क्या चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो उसकी पात्रता के अनुसार उसको देना। जब हम ऐसा निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि जिसको जो मर्जी आया, जा रहा है बेचारा वो दक्षिण भारत की यात्रा में और आप उसको कंबल का दान कर दो तो उसके क्या काम आएगा, भार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? तो इसी प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जो चाहिए उसके अनुसार यदि आप उसको तृप्त कर सकते हैं तो ये देश काल और पात्रता कहलाती है। और जब आप इस प्रकार का देश काल पात्र का निर्णय करने के पश्चात अनुपकारिणे, ये नहीं सोचना है आपको कि मैं अगर इसको दूंगा तो इसके बदले में ये मुझे क्या देगा या मुझे किस प्रकार से इससे लाभ प्राप्त होगा। जब इस निर्णय का आप परित्याग कर देते हैं तो ये कर्तव्य कहलाता है, क्योंकि 24 घंटे हम दान का ही खा रहे हैं, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो खरबपति हो। खेत ने आपसे पैसा नहीं लिया, पेड़ ने आपसे पैसा नहीं लिया महाराज, समुद्र ने, जल ने आपसे पैसा नहीं लिया, प्रकृति का जितना भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सूरज ने आपसे कभी आपको बिल भेजकर पैसा नहीं लिया महाराज, चंद्रमा ने आपको कभी बिल नहीं भेजा। ध्यान देना, जिन पहाड़ों से आपने इन सुंदर बिल्डिंग का निर्माण किया है उन पर्वतों को आपने कभी कुछ पैसा नहीं दिया, साफ फ्री का माल है और उसको हम जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि भगवान ने यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए जी रहा है वो तो केवल अपने पाप को खा रहा है, और जो परोपकार्थ जी रहा है ये उसके जीवन का कर्तव्य समझकर जीने वाला हमेशा पाप मुक्त रहता है। इसलिए दान है ना, कर्ण ने क्यों दान किया, कोई इच्छा नहीं थी उसकी, नहीं तो भगवान के सामने इतनी लंबी लिस्ट रख देता महाराज, इतना मैंने दान किया है और इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, कोई इच्छा नहीं। इतना दान करने के बाद कोई इच्छा नहीं, चाहे स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, क्यों भाई। अगर आप 1 करोड़ रुपया दान करें और भगवान के कहें कि मैं तुमको नरक में भेजता हूं तो बोलो जाओगे, हो गया नहीं फेल। कुछ भी मैं करूं उसके बदले में मुझे कुछ भी मिले मुझे सहर्ष स्वीकार है। राजा जनक जो है अपने स्वलोक गमन करने लगे महाराज, रास्ते में नरक मिला उनको एक क्षण का, बोले एक घड़ी के लिए नरक का, क्योंकि घास खाती हुई किसी को भोजन करते हुए जो है व्यवधान पहुंचाना पाप कहलाता है। चरती हुई गाय को हाँक दिया राजा जनक ने, नरक मिला महाराज उनको, नरक भोगने के लिए चले गए। कौन, राजा जनक, विदेहराज जनक महाराज नरक भोगने के लिए गए। नरक वासियों ने कहा महाराज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपके आने से सुगंधी नरक में फैल गई, अब आप हमारे संग रहो। एक क्षण के लिए गए थे, बरसों पड़े रहे। कौन, राजा जनक नरक में पड़े रहे। आप 1 करोड़ रुपए दान करो और आप क्या चाहोगे उसके बदले में, स्वर्ग या नरक। अरे हृदय में जो है बोलो, घबराओ मत, कोई फांसी थोड़ी मिलेगी यहां, प्रेमपुरी का स्टेज है। स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ चाहिए महाराज, और नरक भेज दे तो कौन गलत, तुम गलत या परमात्मा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है। छुरस्य धारा ऐसे नहीं कहा ब्रह्मज्ञानियों ने, उन ऋषियों ने छुरस्य धारा इसीलिए कहा क्योंकि दान देखो महाराज, दुर्योधन ने भी किया, कर्ण ने किया तो उसको परमात्मा मिला, क्योंकि उसने चाहा कुछ नहीं, और दुर्योधन ने चाहतों की ढेर लगा दिया इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिला, न राज्य मिला न भगवान मिला। ध्यान देना, दान उसने भी किया। दातव्यमिति यद् दानम्, देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर जो है हमको सब कुछ दान में ही मिला है। कि आपने बनाया कुछ अपना, अपने शरीर का कोई अंग आपने बनाया अपने आप, सब दान में मिला हुआ है, तो फिर तुम क्यों परेशान हो। इसलिए जो कुछ मुझे मिला है उसमें से कुछ अंश निकाल करके खाना या जीना, यही मेरा कर्तव्य है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको देने पर आप जो है सर्वथा पाप मुक्त हो जाते हैं और आपको परमेश्वर की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। ये तो उनके लिए है जो वास्तविकता में परमात्मा से प्रेम करते हैं, है ना। जैसे माता भगवती सीता, जब केवट ने नाव पार करा दी, भगवान ने कहा केवट मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तो कुछ लाया नहीं, भगवान संकोच पर विचार करने लगे, इतने में ही अपनी पति के मन की बात को माता भगवती सीता ने समझा और तुरंत अपने हाथ से हीरे से जड़ी हुई अंगूठी निकालकर भगवान के हाथ में रख दी। क्यों भाई, अगर आप होते तो वो अंगूठी केवट को देते या पति पत्नी में ढिशुम ढिशुम होता, क्यों भाई? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अंगूठी दोगे हैं? क्यों भाई, यही होता कि नहीं होता है? पति तो पहले पत्नी और अंगूठी निकालने की जरूरत क्या थी? लेकिन महाराज माता भगवती ने, सीता ने निकाला और भगवान ने वो अंगूठी केवट के हाथ में रख दी, लेकिन केवट ने नहीं ली, वो एक अलग प्रसंग। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते। सीता को राम ऐसे नहीं मिले महाराज, ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है। कर्ण की तरह जब मरते हुई स्थिति में भी यदि आपके अंदर अपना कर्तव्य बोध है तो आपको परमेश्वर को है? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मुक्ति तो दासी की तरह तुम्हारे पीछे घूमेगी महाराज, भगवान दास की तरह तुम्हारे पीछे घूमेंगे, लेकिन तुमको अपना कर्तव्य निभाना आना चाहिए। दूसरा नंबर है, यत्य प्रत्युपकारार्थम फल मुदिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। ये हमारी आपकी स्थिति है, यहां पर हम खड़े हैं। जब हम किसी से यत्य प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार चाहते हैं हम किसी बदले में, ऐसा दें तो ऐसा मिले, ऐसा करें तो ऐसा हो, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, और उसके बाद देने में अगर आपको क्लिष्टता का, क्लेश का अनुभव हो, हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है लेकिन आप दे रहे हैं, दीयते च परिक्लिष्टम, कोई भी चीज हो, चाहे धन हो, वस्तु पदार्थ, और जीवन तो खैर सात्विक के अलावा कहीं है ही नहीं, जीवन का दान, कभी कभी राजस और तामस में भी जीवन का परित्याग करना पड़ता है, लेकिन सात्विकता में सहर्ष है महाराज। तो परिक्लिष्टम, जिसको वीर गति, हमारी, हम आप आराम से यहां बैठकर सत्संग कर रहे हैं, उन विचारों सैनिकों के बारे में विचार कीजिए जो हमारे आपके सुख के लिए महाराज अपने आप को बर्फ में हैं, बर्फ में महाराज हैं, -40 डिग्री सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हुए बंदूक लेके, उनके शरीर का दान हो रहा है कि नहीं? रोज कोई ना कोई सैनिक मरता है महाराज, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। वो कर्जा कहां जाएगा, हम कहां लेके जाओगे वो कर्जा? जरा विचार करो, जाकर देखो, राजस्थान की यात्रा करो महाराज, इस समय गर्मी में, आप कहते हैं ना बंबई में गर्मी गर्मी कर रहे हो महाराज, देख जाके देखो, जोधपुर बीकानेर के रेगिस्तान में आप देखेंगे जाके 12 बजे 1 बजे सैनिक जो है बंदूक लेके खड़ा हुआ बीच रेगिस्तान में, ना वहां कोई हरियाली है, ना कोई पेड़, ना पौधा, ना आदमी, कुछ भी नहीं महाराज। जब वहां से ट्रेन गुजरती तो उनकी हालत, एक सैनिक अकेला खड़ा है महाराज सुबह से शाम तक। जरा विचार करके देखो, हम आप तो एसी में बैठ के ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, उनके ऊपर विचार कीजिए जो हमारे आपकी जीवन की रक्षा कर रहे हैं। कहां लेके जाओगे ये कर्जा, कहीं तो उतारना पड़ेगा। यत्ति प्रत्युपकारार्थम फल मुदिश्य वा पुनः, जब हम प्रत्युपकार, किसके बदले में मुझे क्या मिला, क्या मिलेगा, इन बातों पर विचार करके हम दान करते हैं। दीयते च परिक्लिष्टम, और बहुत क्लेश से, हृदय में अच्छा नहीं लग रहा फिर भी देते हैं, तद्दानम राजसम स्मृतम, इसके बदले में हमको संसार की प्राप्ति होती है। यानी करना तो, बीज तो बोगे तभी तो खेत में कुछ उगेगा, या बिना बोए ही उगेगा, तो राजस दान तो आपको करना ही करना पड़ेगा, और करते भी हो महाराज। जब आपको अपना काम करवाना होता, ऊपर से नोट देते हो कि नहीं देते हो? राशि दान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? माल देके काम चलाना पड़ता है, तो राजसी दान करना ही करना पड़ेगा महाराज, आप चाहो और चाहे। हाँ, उसके बाद जो है रावण और जो है दुर्योधन के दान की अवस्था क्या है, अदेश काले यज्ञानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत्तामस समुदायतम। सबसे गंदा दान माना गया, दान भी है जो दुर्योधन ने किया, जो महाराज किसने किया, रावण ने किया। अदेश काले, न काल का ज्ञान, न देश का ज्ञान, यानी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। हमारे पास जो है उल्टा सीधा साफ पकड़ा दो, जो हमारे इस्तेमाल नहीं आता दूसरे को देके एहसान कर दो, नौकर को देके एहसान कर दो, ये अदेश काल कहलाता है हमारा, है ना, जो हमको जरूरत नहीं वो सब दान हो गया। तो अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च, न पात्रता देखनी है, तो ऐसा जो दान है किस प्रकार से दिया जाता है, असत्कृत अवज्ञातम, अवज्ञा करके, दूसरे हां चल ले जा, ऐसा करके जब हम देते भी हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन जो है दूसरे की अवहेलना करके तिरस्कार पूर्वक असत्कृत अवज्ञातम अवज्ञा करके तिरस्कार करके जब हम इस प्रकार का दान करते हैं तो ये तामस दान कहलाता है। ये दुर्योधन का दान था, देता भी था लेकिन ऐसा देता था जा ले जा ऐसा वाला दान महाराज है ना, जाओ तुम्हारे ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं। रावण जो है ऐसा दान करता था, इसका परिणाम ये हुआ कि उसको महाराज ना संसार मिला और ना परमात्मा की प्राप्ति हुई। वही एक रुपया है, समझने की चेष्टा करें, वही एक रुपया है जिसको आप सात्विक भाव से दान कर सकते हैं, वही एक रुपया है जिसको आप राजस भाव से दान कर सकते हैं, वही एक रुपया है जिसको आप तामस भाव से दान कर सकते हैं। निर्णय आपको करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि आपका लक्ष्य परमात्मा है तो आपका दान सात्विक होना चाहिए, यदि आपका लक्ष्य संसार है तो आपका दान राजस होना चाहिए, और यदि आपका लक्ष्य नरक है, कहां जाना, नरक में जाना है आपका लक्ष्य, तो आपका दान तामस अवहेलना करके दूसरे को छोटा सा, अरे हमारा अस्तित्व ही क्या है महाराज, कल आपको बताया था ना, एक मच्छर के काटने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता, ये तो हमारा अस्तित्व है, है? फूड पॉइजनिंग हो जाए, बुखार आ जाए, पसीना ज्यादा निकल जाए, बीपी की दवाई खाते में नमक छोड़ दिया, खाली नमक कम हो जाए, ये तो हमारा अस्तित्व है शरीर में। नमक की कमी हो जाए तो महाराज जो है हॉस्पिटल वाले वापस भेज देते हैं, बोले खत्म हो गया नमक, ले जाओ, क्या अस्तित्व है हमारा आपका। तो ऐसे अस्तित्वहीन शरीर के ऊपर जब हम बारंबार विचार करेंगे तो आप जब भी यदि ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा या आत्मज्ञान या परमेश्वर की भक्ति यदि आपका लक्ष्य है तो सात्विक भाव को ध्यान में रखें कि जिस प्रकार से मैं संपूर्ण संसार से दान ग्रहण कर रहा हूं उसी प्रकार से, है ना, पेड़ जो है अपने फल को खुद नहीं खाते हैं, आपके लिए उन्होंने रखा, नदी अपना जल खुद नहीं पीती उसने आपके लिए रखा है महाराज, गाय अपना दूध खुद नहीं पीती उसने आपके लिए दूध को छोड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य जब इतने सारे संसार के प्राणी लगभग लगभग सारे मनुष्य को छोड़कर स्वार्थ रहित जीवन जी रहे हैं, कोई आई आज तक गाय आपके दरवाजे पर, तुमने मेरा दूध पिया है, मेरा तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, आया कभी कोई जानवर आया, कोई पहाड़ आपके पास आया कि तुमने मेरे पत्थर को तोड़ तोड़ के बिल्डिंग बना रखा, कोई नहीं आया महाराज, जो मर्जी हमने की कोई भी हमसे पूछने नहीं आया। इसी प्रकार से मेरा भी कर्तव्य है, यथा योग्य प्रभु की सामर्थ्य के अनुसार जो हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम स्थिति तो हमारे यहां राजा हरिश्चंद्र की आती है, नचिकेता की आती है, या जो है क्या नाम कर्ण की आती है, इतने बड़े स्तर पर जब पहुंचेंगे तब भगवान मिलेंगे, लेकिन अभी तो बहुत छोटे स्तर पर, जहां पर 10 के नोट दान करने पर भी अगर कोई दूसरा कह दे कि इन्होंने नहीं इन्होंने दिया था तो रात भर हमको नींद नहीं आती कि मेरा नाम लेना चाहिए और नाम ले रहा है, और फिर बताओ ब्रह्म ज्ञान कहां से समझ में आएगा, ये उपनिषद विद्या है। कहते यश देवे क्या है श्वेतासुतर उपनिषद का जो है, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता हेता प्रकाशन्ते महात्मना। ये उपनिषद के जो रहस्यमयी अर्थ हैं ये उसी के अंदर प्रकट होते हैं जब हमारे अंदर पूर्ण सात्विक भाव जन्म ले लेता है। दानम हम रोज करते हैं, बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन जब आप आश्चर्यमयी दृष्टि से देखेंगे, चार फलों से महाराज सबरी ने भगवान को खरीद लिया, कितनी चीजों से, कंदमूल फलों से खरीद लिया उसने, किसने, सबरी ने महाराज। हमको आज तक राम क्यों नहीं मिला, हमारे दरवाजे पे तो नहीं आया राम, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे अंदर सात्विक भाव जागृत ही नहीं हुआ, अहंकार होने के कारण हमारे अंदर सात्विक भाव जागृत नहीं होता। जब बारंबार आप चिंतन करेंगे तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आएगी और आप दैवी संपदा के दान रूपी गुण को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत जो है दमश्य है ना, इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे क्योंकि समय जो है वो आगे निकल गया। बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।